समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा ना पाए निशा आ ना पाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। इन्हीं प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ आज की इस ओजपूर्ण प्रभात में आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के विशेष समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मुकेश कुमार बल और शगुन चोपड़ा का नमस्कार। श्रोताओं, दीपावली का पर्व बस अब हमसे कुछ ही दिन दूर रह गया है और इससे पहले दिए जलाने की परंपरा भी शुरू हो चुकी है। इस दीपावली दिए कुछ ऐसे जलाएं कि जिनकी खरीद से उन दियों को बेचने वाले लोगों और उनके परिवारों के दिलों में प्रसन्नता के दीप प्रज्वलित हो सके। अर्थात त्योहारों के इस मौसम में जितना हो सके स्वदेशी वस्तुएं उपयोग में लाएं और कारण बने उन वस्तुओं को बनाने वाले लोगों की खुशी का।
Well, those wonderful lines that you shared there were so motivating, really inspiring, and let me also add that. But first of all, good morning, good day everybody, a very warm welcome to all our listeners. You are tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashwani network. Let me also add something. Well, I would like to share a quote by Oscar Wilde. Well, this goes like this: keep love in your heart. A life without it, a life without love, is like a sunless garden when the flowers are dead. Well, more than mere clever sayings, this particular quotation by Oscar Wilde, this is about life. Well, life invites us to question things, and Oscar Wilde has given a specific and a wonderful contribution. And also, listeners, Diwali is approaching, and as Mukesh said, we have to light diyas and spread light by your words, by specific ideas which you can share as much as you can. With your small contributions, they matter a lot. So let's begin our program first with the headlines, national and international news. Then, listeners, we'll provide you Metro City updates. And today, we'll also explore at length historical information which is related to today. Today, it's 16th of October. First, let's begin with the headlines. Prime Minister Narendra Modi will visit Andhra Pradesh today. During the visit, Mr. Modi will inaugurate, lay the foundation stone and dedicate to the nation multiple development projects worth around 13,430 crore rupees in Kurnool in the afternoon. These projects span across key sectors including industry, power transmission, roads, railways, defence manufacturing and petroleum, natural gas, reflecting the government's commitment to enhancing regional infrastructure, accelerating industrialization, and driving inclusive socio-economic growth in the state. Mr. Modi will also address a public gathering on the occasion. The Prime Minister will also perform puja and darshan at Sri Brahmaramba Mallikarjuna Swami Varla Devasthanam, Sri Shailam in Nandyal district. He will also visit Sri Shivaji Spurti Kendra in Sri Shailam.
भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने नरकटियागंज से संजय पांडे, चनपटिया से उमाकांत सिंह और चिरैया से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। बीना देवी कोचा धामन सीट से सतीश कुमार यादव राघोपुर से और मुरारी पासवान पीर पैंती से चुनाव लड़ेंगे। इस सूची के साथ ही पार्टी ने अपने खाते की सभी 101 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर हरिणी अमरसूरिया विल अराइव इन इंडिया टुडे ऑन अ टू डे ऑफिशियल विजिट, मार्किंग हर फर्स्ट ट्रिप टू द कंट्री सिंस अज्यूमिंग ऑफिस। वेल, मिस अमरसूरिया इज शेड्यूल्ड टू मीट सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स टू डिस्कस की बायलैटरल इश्यूज एंड एवेन्यूज फॉर स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन मल्टीपल सेक्टर्स। During her visit, the Sri Lankan Prime Minister will deliver the keynote address at a summit organized by a private TV channel. Ms. Amarsuria, who also holds the education portfolio in Sri Lanka, She will visit IIT Delhi and Niti Aayog to explore collaborations in education, innovation and technology. A distinguished alumna of Hindu College, University of Delhi, she will also visit her alma mater. In addition, the Sri Lankan leader will attend a business event aimed at strengthening trade and commercial linkages between the two nations.
दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इससे पृथ्वी का तापमान और बढ़ सकता है और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी और भी घटनाएं हो सकती हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 से 2024 के दौरान वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 3.5 पार्ट्स प्रति मिलियन की वृद्धि हुई। ये वर्ष 1957 में आधुनिक मापन शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी वृद्धि है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में जारी हुई है जब अगले महीने ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होना है। रिपोर्ट में इस वृद्धि के लिए जीवाश्म ईंधन के जलने और विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका में जंगलों की आग को जिम्मेदार माना गया है।
Now let's give our listeners the sports updates. Beginning with this landmark development for Indian sports, Ahmedabad in Gujarat has been recommended as the host city for 2030 Commonwealth Games. And we have a detailed report.
The announcement was made during the executive board meeting of Commonwealth Sport, marking a historic moment as the games will coincide with the centenary celebration of the Commonwealth Sport movement. The recommendation, which will be placed before the General Assembly of Commonwealth Sport next month, reflects India's growing stature in the global sporting arena. The proposal was jointly submitted by the Government of India, the Government of Gujarat, and the Commonwealth Games Association of India. The move aligns with Prime Minister Narendra Modi's consistent efforts to promote a sports culture in India, particularly through initiatives like Khelo India. Union Home Minister Amit Shah congratulated the nation and said India has earned this honor by creating world-class sports infrastructure and nurturing athletes capable of competing at the global level. Union Sports Minister Mansukh Mandviya said that the 2030 Commonwealth Games in Ahmedabad will be a moment of pride for every Indian. President of the Commonwealth Games Association of India, P.T. Usha, stated that centenary Commonwealth Games in Ahmedabad will be games for the future, built on sustainability, inclusivity and innovation. Moreover, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel called it a truly proud moment for Gujarat and India and praised the Prime Minister's leadership in securing the recommendation. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
श्रोताओं, अगर खेल जगत से जुड़ी और खबरों की बात करें तो ग्रीस के एथेंस में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में शॉटगन में भारतीय निशानेबाज जोरावर सिंह संधु कल 133 एथलीटों के बीच कुल 49 हिट के साथ पांचवें स्थान पर रहे। जोरावर सहित 13 निशानेबाज 49 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। महिला वर्ग में कीर्ति गुप्ता 43वें और नीरू ढांडा 50वें, आशिमा अहलावत 67वें स्थान पर रहीं। इसके अलावा अगले वर्ष आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए नेपाल और ओमान ने अपनी दावेदारी पक्की कर ली है। ये दोनों एशिया पैसिफिक क्वालिफायर की दो शीर्ष टीम रही हैं। फिलहाल तीसरे स्थान पर चल रही संयुक्त अरब अमीरात की टीम भी सामोआ पर जीत के बाद दौड़ में बनी हुई है और डेनमार्क के ओंडेंस में चल रहे बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन आयरलैंड के नहत गुयेन को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। आज राउंड 16 में उनका सामना डेनमार्क के एंडर्स एंटोन सेन से होगा। प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आज उनका सामना चीनी ताइपे के यांग पोहान और लियू कुआंग हेंग की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें फुटबॉल की तो मणिपुर ने रिकॉर्ड 23वीं बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जीत ली है। कल हुए फाइनल में मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को 1 गोल से हराया। और अब रुक करते हैं महानगरों की खबरों का। सबसे पहले बात दिल्ली के समाचारों की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा संस्कृति की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।
मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार की ओर से बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हमारा ये दीपावली का महापर्व शायद इन पटाखों की स्वीकृति के बिना सूना रह जाता, हमारे बच्चे उदास हो जाते, परंतु आज आपने ये स्वीकृति दे करके हमें बहुत ही एक खुशी प्रदान की है और हम पर्यावरण और परंपरा को एक साथ चलाते हुए पूरी तरीके से सजग रहेंगे।
वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को लागू करने के लिए जल्द ही एक बैठक करेगी। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इस निर्णय के बाद दिल्ली के लोगों के लिए दीपावली और अधिक खास हो गई है।
अब दिल्ली के अंदर 20 और 21 तारीख तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि शाम को 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ये पटाखे चलाए जा सकते हैं और पटाखे केवल ग्रीन पटाखे चलाए जाएंगे। दिल्ली का पॉल्यूशन कम करना है।
इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में हरित पटाखे बेचने वाले व्यापारी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली के जोन 1 के विशेष पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था रविंद्र यादव ने ये जानकारी देते हुए कहा कि आवेदन पत्र डीसीपी कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस नियम और शर्तों की जांच करने के बाद अगले 2 दिन में पटाखे बेचने के लाइसेंस की अनुमति प्रदान करेगी।
अभी हमारी वेबसाइट जो लाइसेंसिंग की वेबसाइट है उस पर एप्लीकेशन फॉर्म है, जिनको अप्लाई करना है ट्रेडर्स को उस पर डाउनलोड कर लें। डीसीपी ऑफिस में भी वो फॉर्म उपलब्ध होगा, तो कल ही उसको अप्लाई कर दें और हम उसको चेक करके जो हमारे कंडीशंस हैं उसको 2 दिन के अंदर प्रोसेस करके उसको ग्रांट करने का हम प्रयास करेंगे।
इसके अलावा दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कल 12 वित्त पोषित कॉलेजों को वित्तीय सहयोग देने के लिए 108 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी करने के आदेश दिए। श्री सूद ने बताया कि ये राशि वित्त राशि कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन, कॉलेजों के रखरखाव तथा आवश्यक पूंजीगत व्यय के लिए दी जा रही है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने इन सभी कॉलेजों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 3 किस्तों द्वारा 325 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की है। और अब मुंबई के समाचारों का हाल। राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों में स्वच्छता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर ने कल आरोग्य भवन में एक मशीनीकृत कपड़े धोने की सुविधा लॉन्ड्री का उद्घाटन किया। इस पहल में जिला, सामान्य, उपजिला, ग्रामीण और महिला अस्पतालों के साथ साथ ट्रॉमा केयर इकाइयों सहित 593 सरकारी अस्पताल शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 29,315 बिस्तर की है। अधिकारियों ने कहा कि ये सेवा रोगियों को स्वच्छ और रोगाणु मुक्त कपड़े प्रदान करेगी। इसके अलावा मोर मुगाओ बंदरगाह प्राधिकरण MPA के अध्यक्ष डॉ. एम विनोद कुमार ने कहा कि MPA 27 से 31 अक्टूबर तक मुंबई के गोरेगांव स्थित बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र नेस्को में आयोजित होने वाले भारत समुद्री सप्ताह IMW 2025 में 3,000 करोड़ रुपए मूल्य के 24 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेगा। IMW 2025 से पहले पणजी में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री विनोद कुमार ने कहा कि इसका उद्देश्य मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल मैरिटाइम विजन 2047 के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करते हुए विश्व में समुद्र क्षेत्र में एक प्रमुख हितधारक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। और विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट मुंबई के खारघर परिसर में नवनिर्मित शैक्षणिक भवन 1, 2 और 3 और बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर निफ्ट मुंबई के कुलपति श्री पीयूष गोयल ने एक स्मारक पट्टिका का अनावरण किया और तकनीकी वस्त्र प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। अत्याधुनिक सुविधाओं में उन्नत कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, 500 सीटों वाला एक सभागार और रचनात्मकता और बहुउद्देशीय स्थल शामिल हैं। अगर कोलकाता के समाचारों की बात करें तो मोहन बागान सुपर जायंट्स ने कल कोलकाता के किशोर भारती स्टेडियम में 125वें IFA शील्ड के आखिरी ग्रुप मैच में यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब को 2-0 से पराजित किया। मोहन बागान के लिए पहला गोल दमित्री पेट्राटोस ने 45वें मिनट में किया। दूसरा गोल दूसरे हाफ में 49वें मिनट में सासन कमिंग्स ने किया। फाइनल मुकाबला शनिवार को युवा भारती क्रीड़ांगन में खेला जाएगा। फाइनल में मोहन बागान का सामना ईस्ट बंगाल से होगा। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचार शगुन से।
Yes, Mukesh, and I will begin with Chennai. Well, a festival of light approaches us. So, Southern Railway has announced special trains between Padnur in Coimbatore and Chennai in view of the Diwali season. The special train will leave Chennai Central on 17th night at 11:55 p.m. and reach Padnur the following day. The pairing train will leave Padnur at 2 p.m. on October 18 and then reach Chennai at 11:10 p.m. the very same day. Another special train will depart from there at 11:50 p.m. on 21st of October and arrive at Chennai at 9:30 p.m. the next day. Another update from Chennai. Well, Chief Minister M.K. Stalin has written to Prime Minister Narendra Modi urging the Union Government to support mango farmers. He appealed to the Prime Minister to direct the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority under the Commerce Ministry to extend necessary support to the state government by way of development of infrastructure like integrated pack houses, inland container depots, coal ports and more. Let's head now to Bengaluru. The property owners in Bengaluru with B Khata documents are given an opportunity to convert them into A Khatas. Well, Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar has announced a 100-day campaign from November 1st onwards. November 1st, inaugurating the online system for the conversion of B Khata to A Khata, he said, D.K. Shivkumar said, that the state government has taken a historic decision that will benefit 15 lakh property owners in Bengaluru. Two help desks, they will be set up in the municipal corporation offices and Bengaluru One centres will help with the registration by the owners. The properties up to 2,000 square metre, they will come under this scheme. Now, I am heading to Telangana. Well, Telangana State Hajj Committee has received a total of 11,757 applications, while the state has been allotted 4,292 seats. The number of applications is around 2,500 more than that of last year. Among the applicants, 772, they are aged 65 years and above, 67 are women aged between 45 and 65 years, and the remaining, over 10,000, they belong to the general category. So far, 1,928 applications for the first list and 920 from the second list, they have been cleared, bringing the total number of selected pilgrims to 2,848.
श्रोताओं, आज सवेरे में अब वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का। सबसे पहले बात दिल्ली की। इधर राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उधर मुंबई में गरज के साथ बादल छाए रहने और एक दो बार हल्की बारिश की संभावना है। आज का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और कोलकाता में आज मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अब हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के मौसम का हाल सुना रही हैं शगुन।
Yes, Mukesh, again I'll begin with Chennai. It is expected to have generally cloudy sky with light rain. Minimum temperature was 25 degrees Celsius. Maximum will be around 34 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain. Minimum temperature was 20 degrees and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad, again, expected to have partly cloudy sky with haze. The minimum temperature will be 25 degrees Celsius and maximum it will be around 30 degrees Celsius.
श्रोताओं, अब बात करते हैं आज के दिन की विशेषता के बारे में।
जी,
आज विश्व खाद्य दिवस है। ये दिन विश्व में लोगों को खाद्यान्न की महत्वता को समझने और उसकी बर्बादी को रोकने के लिए प्रेरित करता है। वर्ष 1980 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए विकासशील देशों के बीच तकनीकी और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना और विकसित देशों से आधुनिक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है। लेकिन जब तक हम अपनी दैनिक जीवनचर्या में खाद्यान्नों के उपयोग को लेकर सचेत नहीं होंगे, तब तक अन्न की बर्बादी को रोकना संभव नहीं है। इसलिए भोजन उतना ही लें जितना कि हम खा सकें। इसके लिए आमतौर पर कहा भी गया है कि उतना ही लें थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में।
Well, yes, your portions should be defined. So, listeners, the Food and Agriculture Organization, FAO, of the United Nations, it was established today. Today, it's 16th of October. And this happened, this specific thing happened in the year 1945. The aim was to defeat hunger and also improve nutrition and food security around the world. So, to commemorate its founding, World Food Day, it's observed every year टुडे।
इसके अलावा आज विश्व एनेस्थीसिया दिवस भी है। ये दिन सर्जरी में ईथर एनेस्थीसिया के पहले सफल प्रयोग की याद में मनाया जाता है जो 1846 में हुआ था। श्रोताओं, एनेस्थीसिया एक ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट है जो सर्जरी, डायग्नोस्टिक टेस्ट या डेंटल वर्क जैसे मेडिकल प्रोसेस को सक्षम करने के लिए सेंसिटिविटी खासतौर से दर्द को अस्थायी रूप से रोक देता है। ये नर्व्स को ब्रेन तक दर्द के संकेत भेजने से रोककर काम करता है।
राइट, एंड आई थिंक दिस पर्टिकुलर डे, वेल लेट्स गो बैक अ बिट, डेंटिस्ट विलियम थॉमस ग्रीन मॉर्टन पब्लिकली ही डेमोंस्ट्रेटेड ईथर्स यूज एट मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल व्हिच रेवोल्यूशनाइज सर्जरी बाय अलाउइंग प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म विदाउट पेन, एंड आई कांट इवन इमेजिन हाउ मच डिफिकल्ट इट वुड हैव बीन विदाउट एनेस्थीसिया। सो वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, इट इज सेलिब्रेटेड टुडे to commemorate the first successful public demonstration of ether, as I told you, by dentist William Thomas Green Morton. He did it publicly.
जी, और अब बात करते हैं आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात 1905 में तत्कालीन वॉयसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के पहली बार विभाजन की घोषणा आज ही के दिन की थी।
In 1962, Cuban Missile Crisis, it began as U.S. President John F. Kennedy, he was shown, the photos were shown, confirming the presence of Soviet missiles in Cuba.
इससे तीन बरस पहले यानी 1959 में आज ही के दिन राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना भी हुई थी।
And in 1978, test debut of Kapil Dev, this happened, India versus Pakistan was the match at Faisalabad.
1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया।
In 1999, Dr. Nelson Mandela conferred with Bharat Ratna the highest civilian honor.
1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
In 1999, Indian women claimed bronze in the Asian Team Chess Championship in Shenyang.
1984 में दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक कार्यकर्ता डेसमंड टूटू को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। और 2011 में भारतीय मूल के धावक 100 वर्षीय फौजा सिंह ने सबसे अधिक उम्र में टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन पूरा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। उम्र का शतक बना चुके फौजा सिंह ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच 8 घंटे से अधिक समय में फिनिश लाइन पार की। इसके अलावा 2012 में सौर मंडल के बाहर एक नए ग्रह अल्फा सेंचुरी बीबी का पता चला। और कार्यक्रम में अब बात उन महानुभावों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
And we are beginning with?
तो हम शुरुआत कर रहे हैं हरीश चंद मेहरोत्रा से। श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है इनकी। ये भारत के एक महान भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। हरीश चंद मेहरोत्रा जिस तरह रामानुजन से इनकी तुलना की जाती है, जैसे रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया, ठीक उसी प्रकार इन्होंने भी गणितज्ञों के बीच काफी प्रसिद्धि हासिल की। उनकी रुचि भौतिक शास्त्र में अधिक थी, लेकिन बाद में उन्होंने गणित पर शोध किया। मॉडर्न मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य को विश्वभर में उनके इस कार्य को विश्वभर में सराहा जाता है। उन्हें 19वीं शताब्दी का महान गणितज्ञ भी माना जाता है। भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। अमेरिका में उन्हें कोल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
लिसनर्स, टुडे वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग चेम्बई वैद्यनाथ भगवथारी, वेल द कर्नाटिक म्यूजिक सिंगर फ्रॉम केरला। वेल, ही इज पॉपुलरली नोन एज चेम्बई और समटाइम्स इवन भगवथारी। वेल, ही वाज नोटेड फॉर हिज पावरफुल वॉइस एंड मैजेस्टिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग, एंड ही इज अ रेसिपिएंट ऑफ सेवरल टाइटल्स एंड ऑनर्स। दिस इंक्लूड्स मद्रास म्यूजिक अकेडमी संगीता कलानिधि इन 1951, एंड ही इज ऑल्सो नोन, लिसनर्स, फॉर हिज एनकरेजमेंट ऑफ अपकमिंग म्यूजिशियंस एंड एबिलिटी टू स्पॉट न्यू टैलेंट।
आज जयंती है गोविंद दास की। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, सांसद तथा साहित्यकार थे। उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देश की राजभाषा के रूप में हिंदी के वे प्रबल समर्थक रहे। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा संचालित सभी आंदोलनों में भाग लिया और वे कई बार जेल भी गए। उन्होंने हिंदी में 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की। देवकी नंदन खत्री के तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता संतति की तर्ज पर उन्होंने चंपावती, कृष्णलता और सोमलता नामक उपन्यास भी लिखे। ये उपन्यास उन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में लिखे थे। उन्होंने शेक्सपियर के रोमियो जूलियट, एज यू लाइक इट, पेटविज प्रिंस ऑफ टायर और विंटर स्टेल नामक प्रसिद्ध नाटकों के आधार पर सुरेंद्र सुंदरी, कृष्ण कामिनी, होनहार और व्यर्थ संदेह जैसे उपन्यासों की भी रचना की। उन्होंने वाणासुर पराभाव नाम से एक काव्य रचना भी की है।
Listeners, today, well, I began the program with a quote that I shared by Oscar Wilde. Today, it's his birth anniversary, the author, poet, and a playwright. After writing in different literary styles throughout the 1880s, he became one of the most popular and also an influential dramatist in London in the early 1980s, and he was a key figure in the emerging aestheticism movement of the late 19th century, and, well, he's regarded as many as the greatest playwright of the Victorian era.
आज जयंती है भारत के जाने माने तबला वादक लच्छू महाराज की। लच्छू महाराज ने बनारस घराने की तबला वादन परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके कई शिष्य देश विदेश में आज भी तबला वादन कर रहे हैं। लच्छू महाराज बेहद सादगी पसंद व्यक्ति थे, यही कारण था कि उन्होंने कभी कोई सम्मान ग्रहण नहीं किया। वर्ष 1972 में केंद्र सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने ये सम्मान लेने से मना कर दिया। ये थी लच्छू महाराज की सादगी की मिसाल।
Well, let me also tell you about another musician now. I am talking about Arthur Blakey, jazz drummer now. Jazz drummer and a band leader. Well, he made a name for himself in the 1940s in the big bands then in the 1940s, this particular time period. And the group that he formed was a collective of the contemporaries. But over the years, the band became well known for incubating young talent, and then he was inducted into the Downbeat Jazz Hall of Fame and then posthumously inducted into Modern Drummer Hall of Fame. I have a very interesting, beautiful creation by him. Listen in. Listeners, let me talk about another musician now. It's his birthday today. John Mayer, well, the singer, songwriter and guitarist, even I have been listening to him from a very long time. The song that I have chosen, especially people, the fans that they talk about, they have shared their own experiences that this particular song, Heart of Life, it makes them, it motivates them. So we are in that particular spirit today. So let's listen into Heart of Life.
Things you need to hear, so turn off your tears and listen. Pain throws your hope to the ground.
और अब जाते जाते मना लेते हैं श्रोताओं के साथ ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर सुविख्यात अभिनेत्री हेमा मालिनी का जन्मदिन। हेमा मालिनी हिंदी फिल्मों की सफल अभिनेत्री होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की मथुरा लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद भी हैं। हेमा मालिनी ने लगभग 4 दशक के फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। शोले, ड्रीम गर्ल, क्रांति, रजिया सुल्तान, बागबान सहित कई सुपरहिट फिल्मों में ड्रीम गर्ल की अदाकारी को दर्शकों ने खूब सराहा। उन्हें वर्ष 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेश है उनकी फिल्मों के कुछ सदाबहार गीतों की ये मेडली।
किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल।
Wishing Hema Malini a very, very happy birthday.
श्रोताओं, आज सवेरे के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
वेल, वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। वी होप यू हैव अ वंडरफुल ब्यूटीफुल डे अहेड। नमस्कार।